एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जिसने वाकई दुनिया को, अफ्रीका को एक नए नज़रिए से देखना सिखाया। चिनुआ अचेबे का कालजयी उपन्यास थिंग्स फॉल अपार्ट।
बिल्कुल, और चिनुआ अचेबे वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, उन्हें तो आधुनिक अफ्रीकी साहित्य का आप कह सकती हैं जनक माना जाता है। उनका एक मकसद था,
हाँ, एक मिशन था उनका,
हाँ, कि अफ्रीका की कहानी अफ्रीकी ही सुनाए। वो जो पश्चिम ने एक छवि बना दी थी ना, पिछड़े अंधेरे महाद्वीप की, उसे चुनौती देना चाहते थे।
और थिंग्स फॉल अपार्ट उसी मिशन का शायद सबसे मजबूत कदम था। 1958 में आया ये उपन्यास। सोचिए वो समय जब अफ्रीका धीरे धीरे उपनिवेशवाद से निकल रहा था। ये कहानी हमें ले जाती है नाइजीरिया के एक काल्पनिक गांव उमोफिया में, 19वीं सदी का आखिरी दौर। ये उस समाज की कहानी है, मतलब यूरोपियन लोगों के आने से पहले का समाज।
हाँ, और फिर कैसे वो बाहरी ताकतें आती हैं और सब सब बिखरने लगता है।
सही कहा। और कमाल की बात यह है कि ये पहला अफ्रीकी उपन्यास था जिसे दुनिया भर में इतनी पहचान मिली।
इसने जैसे आंखें खोल दी सबकी, दिखाया कि अरे, उपनिवेशवाद से पहले भी वहां एक जीता जागता समाज था, उनकी अपनी व्यवस्थाएं थीं, अपना दर्शन था, कोई कोई जंगली झुंड नहीं था वो।
और उपन्यास का नाम भी थिंग्स फॉल अपार्ट, ये एक आयरिश कवि हैं W.B. Yeats, उनकी कविता से लिया गया है। चीजें बिखर रही हैं, केंद्र संभल नहीं पा रहा।
क्या बात है, ये तो शुरुआत से ही इशारा है कि कहानी किस ओर जाएगी।
बिल्कुल, तो आज हम इसी बिखराव को, इसके किरदारों को और इसकी आज की प्रासंगिकता को समझने की कोशिश करेंगे।
जरूर, तो शुरू करते हैं उमोफिया से, वो दुनिया जो बिखरने वाली थी। कैसा था वो समाज? काफी मतलब जटिल सामाजिक ताना बाना था। अपनी मान्यताएं थीं, देवता थे, पूर्वज थे, न्याय के लिए उनकी अपनी एक प्रणाली थी, एग्वुग्वु कहते थे उसे, जिसमें गांव के सम्मानित लोग मुखौटे पहनकर जैसे पूर्वजों की आत्मा बनकर फैसले सुनाते थे।
अच्छा,
उनके अपने त्योहार थे जैसे शांति सप्ताह, उस दौरान कोई हिंसा नहीं, और मेहमान नवाजी की अपनी रस्में थीं, जैसे वो कोला नट तोड़ने की रस्म।
और इसी समाज में एक बहुत ही मजबूत उभरता हुआ किरदार है उकोनखो। उसका बचपन आसान नहीं था। पिता उनो का वो संगीतकार थे, पर गांव वाले उन्हें असफल मानते थे, कर्ज में डूबे हुए।
हाँ, और ओकोनको को अपने पिता की इस छवि से सख्त नफरत थी। उसने पूरी जिंदगी लगा दी ये साबित करने में कि वो अपने पिता जैसा नहीं है।
बिल्कुल, उसने कुश्ती में नाम कमाया, मेहनत की, जमीन बनाई, यम उगाए।
यम तो वहाँ, हाँ, यम मतलब इग्बो समाज में समृद्धि और मर्दानगी का प्रतीक था।
बिल्कुल,
उसने पत्नियां रखी, बड़ा परिवार बनाया, लेकिन ये सब करते हुए भी एक अंदर एक डर था।
किस चीज का डर?
कमजोरी का डर, असफलता का डर, कि कहीं लोग उसे उसके पिता जैसा ना समझ लें।
और अचेबे ने यहाँ इग्बो समाज को बहुत संतुलित तरीके से दिखाया है, मतलब कोई एकदम खूबसूरत तस्वीर नहीं बनाई।
नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने दिखाया कि समाज विकसित था, जटिल था, उसमें लोकतंत्र के तत्व थे, न्याय था, लेकिन साथ ही
कठोरता भी थी।
जैसे वो लैंगिक भूमिकाएं बहुत सख्त थीं।
हाँ, और कुछ प्रथाएं जैसे वो जुड़वा बच्चों को अशुभ मानकर जंगल में छोड़ देना, वो आज हमें बहुत क्रूर लगती हैं। अचेबे ने उसे छुपाया नहीं है।
सही कहा, और ओकुनकुओ का किरदार इसी जटिलता को दिखाता है। वो मेहनती है, पर डर की वजह से कठोर है, हिंसक भी हो जाता है, परंपरा को मानता है पर उसके मानवीय पक्ष को कई बार भूल जाता है।
और तभी कहानी में आता है इकेमिफुना।
हाँ, इकेमिफुना कौन था वो?
वो पड़ोसी कबीले का एक लड़का था। किसी पुराने झगड़े को सुलझाने के लिए उसे शांति समझौते के तौर पर उमोफिया भेजा गया था और उसे ओकुनको के घर रखा गया था।
अच्छा, ओकुनको के घर, हाँ, और धीरे धीरे वो परिवार का हिस्सा सा बन गया। ओकुनको भी उसे अंदर ही अंदर पसंद करने लगा था, और ओकोंको का अपना बेटा नोवोए,
हाँ, नोवोए जो थोड़ा अलग था अपने पिता से, संवेदनशील।
बिल्कुल, उसे इकेमिफुना में एक बड़ा भाई मिल गया। वो बहुत खुश था इकेमिफुना के आने से,
लेकिन ये शांति ज्यादा टिकी नहीं।
नहीं, गांव की जो देववाणी थी ओरेकल, उसने हुक्म दिया कि इकेमिफुना की बलि देनी होगी।
बलि क्यों?
ये स्पष्ट नहीं किया गया, बस देववाणी का आदेश था। गांव के बड़े बुजुर्ग उसे जंगल ले गए। ओकोंको को मना किया गया था कि वो साथ ना जाए, क्योंकि लड़का उसे पिता कहता था।
ये तो स्वाभाविक है,
लेकिन ओकोंको फिर वही डर कि लोग कमजोर समझेंगे, वो न सिर्फ साथ किया बल्कि जब आखिर में एकेमेफुना डरकर मदद के लिए उसकी तरफ भागा
तो
ओकोंको ने खुद अपने मिचेते से उस पे वार कर दिया।
ओहो, ये तो बहुत कठोर है।
हाँ, और ये घटना ओकोंको के मन पर एक बोझ बन गई, एक अपराध बोध। और नोए तो अपने पिता और अपनी संस्कृति के इस रूप से बिल्कुल टूट गया।
और इसके बाद एक और घटना होती है ना, वो अंतिम संस्कार वाली।
हाँ, एक बुजुर्ग का अंतिम संस्कार था, उसमें रिवाज के तौर पर बंदूकें चलाई जाती थी। उसी दौरान ओकोंको की बंदूक से गलती से गोली चल गई और मरने वाले बुजुर्ग के बेटे की ही मौत हो गई।
अनजाने में हुआ, लेकिन
ये धरती देवी के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध माना गया।
तो इसकी सजा क्या थी?
7 साल का निर्वासन। ओकोंको और उसके पूरे परिवार को ओमोफिया छोड़कर जाना पड़ा अपनी माँ के गांव मबांटा।
तो ये दो घटनाएं, एकेमेफुना की हत्या और फिर ये निर्वासन, ये उसके जीवन के बड़े मोड़ थे।
बिल्कुल, एक ने उसे अंदर से तोड़ा, बेटे को दूर किया, दूसरे ने उसे उसकी जड़ों से, उसकी शक्ति के केंद्र से दूर फेंक दिया, और वो भी ऐसे समय में जब बाहर की दुनिया दस्तक दे रही थी।
मबांटा में उसका वक्त कैसा गुजरा निर्वासन में?
उचेंदु थे, काफी समझदार बुजुर्ग। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में, माँ के रिश्ते के महत्व के बारे में। पर ओकोंको के मन में कड़वाहट थी। उसे लग रहा था जैसे उसके सबसे जरूरी साल बर्बाद हो रहे।
और उमुयोफिया से खबरें आ रही थी, उसका दोस्त था ना एक ओबेरे का।
हाँ, ओबेरे का वो खबरें लाता था। उसने बताया कि कैसे पास के गांव अबाए में, वहां जब पहली बार एक गोरा आदमी आया तो लोगों ने उसे मार दिया।
अच्छा,
फिर दूसरे गोरे लोग आए और उन्होंने पूरे गांव को ही खत्म कर दिया।
बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। ये तो एक तरह की चेतावनी थी।
बिल्कुल, एक अशुभ संकेत था कि क्या होने वाला है। और फिर ये बदलाव मबांटा भी पहुंच गया। ईसाई मिशनरी आ गए।
मिशनरी वहां भी?
हाँ, उनका लीडर था मिस्टर ब्राउन। शुरू में तो गांव वालों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मिशनरियों को चर्च बनाने के लिए वो जमीन दे दी जिसे बुराई का जंगल कहते थे, शापित जगह।
क्यों, मजाक उड़ाने के लिए?
हाँ, उन्हें लगा कि मिशनरी वहां टिक नहीं पाएंगे, बुरी आत्माएं उन्हें मार डालेंगी। लेकिन जब वो वहां आराम से रहे, चर्च बना लिया, तो कुछ लोग उनसे प्रभावित होने लगे, खासकर वो लोग जिन्हें समाज में नीचा समझा जाता था, जैसे ओसू।
ओसू ये कौन थे?
वो एक तरह से मंदिर को समर्पित लोगों के वंशज थे जिन्हें अछूत माना जाता था। वो लोग और कुछ और जो हाशिए पर थे, उन्हें ईसाई धर्म में कुछ आकर्षण दिखा।
ये दिलचस्प है कि ईसाई धर्म पहले किन्हें अपनी ओर खींच रहा था।
हाँ, और मिस्टर ब्राउन का तरीका भी थोड़ा नरम था। वो लोगों से बात करते थे, समझने की कोशिश करते थे, स्कूल अस्पताल भी खोले।
तो ये एक तरह से उपनिवेशवाद का नरम चेहरा था,
कह सकते हैं। पर असर में तो ये भी संस्कृति की जड़ों को धीरे धीरे काटना ही था।
और फिर ओकोंको के लिए सबसे बड़ा झटका आता है।
हाँ,
जब उसे पता चलता है कि उसका अपना बेटा नोए वो ईसाई बन गया है।
नोए
क्यों?
नोए पहले से ही अपनी संस्कृति की कुछ बातों से परेशान था, जैसे एकेमेफुना की हत्या, वो जुड़वा बच्चों वाली बात। उसे ईसाई धर्म की कहानियों में, उनके भजनों में, उनकी करुणा की बातों में ज्यादा शांति मिली।
ओकोंको ने क्या किया?
वो तो आग बबूला हो गया, नोए को मारा पीटा और हमेशा के लिए घर से निकाल दिया।
ये सिर्फ बाप बेटे का झगड़ा नहीं था, ये उस बिखराव का संकेत था जो कबीले के अंदर शुरू हो चुका था।
बिल्कुल, पीढ़ियों के बीच की खाई, संस्कृति के अंदर की दरारें, ये सब दिखने लगा था। क्या बदलाव हमेशा बाहर से ही आता है या कभी कभी अंदर से भी पनपता है?
फिर 7 साल बाद ओकोंको ओमोफिया लौटता है बड़े अरमानों के साथ।
हाँ, लेकिन गांव बदल चुका था। ईसाई चर्च ताकतवर हो गया था, अंग्रेजों की सरकार जम चुकी थी, उनकी अदालतें थीं, कानून थे, जेल थी,
और गांव की अपनी पुरानी व्यवस्था, एगबुगबू वगैरह,
उनका असर कम हो गया था। लोग अब अपनी शिकायतें लेकर अंग्रेजों की अदालत में जाने लगे थे।
और मिशन में भी बदलाव आया था, है ना, मिस्टर ब्राउन की जगह।
हाँ, अब रेवरेंड जेम्स स्मिथ आ गए थे, और वो मिस्टर ब्राउन से बिल्कुल उल्टे थे, कट्टर। इग्बो संस्कृति को वो शैतान का काम मानते थे, कोई सम्मान नहीं, कोई बातचीत नहीं।
तो तनाव बढ़ गया होगा
बहुत ज्यादा। और इसी माहौल में एनॉक्स नाम का एक नया ईसाई बना लड़का, जो बहुत कट्टर था, उसने एक बड़ी बेअदबी कर दी।
क्या किया उसने?
एक त्योहार के दौरान उसने सबके सामने एक एग्बुगबू का नकाब खींचकर उतार दिया।
अरे ये तो बहुत बड़ा अपमान हुआ होगा।
एग्बो लोगों के लिए ये सबसे बड़ी ईशन निंदा थी। पूरा कबीला भड़क गया। गुस्से में लोगों ने पहले एनोक का घर जलाया और फिर चर्च में भी आग लगा दी।
इसके बाद तो अंग्रेज चुप नहीं बैठे होंगे।
बिल्कुल नहीं। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, जो उस इलाके का बड़ा अफसर था, उसने गांव के नेताओं को बुलाया बातचीत के बहाने।
और फिर
जब नेता लोग निहत्थे पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया धोखे से। उन्हें कैद में रखा, बेइज्जत किया, सिर मुंडवा दिए और भारी जुर्माना लगाकर छोड़ा।
ये तो सिर्फ गिरफ्तारी नहीं थी, ये पूरे कबीले का अपमान था।
हाँ, एक गहरा जख्म था ये।
इस अपमान के बाद क्या हुआ?
कबीले ने एक बड़ी सभा बुलाई कि अब क्या करना है। ओकोनको तो हमेशा से लड़ने को तैयार था। वो पूरी तैयारी से आया। सभा चल रही थी तभी अंग्रेज सरकार के संदेश वाहक आ गए, कोर्ट मैसेंजर।
सभा रोकने के लिए?
हाँ, उन्होंने कहा सभा बंद करो। ओकोनको का खून खौल गया। उसने अपना मचेते निकाला और मुख्य संदेशवाहक का सिर काट दिया।
उसने सोचा होगा कि अब सब लड़ेंगे।
शायद यही उम्मीद थी, लेकिन हुआ उल्टा। जैसे ही वो संदेशवाहक गिरा, भीड़ में एकदम सन्नाटा छा गया। लोग डर गए, पीछे हट गए।
लड़ने की बजाय?
हाँ, ओकोनको ने अपने चारों तरफ देखा और उसे समझ आ गया कि वो अकेला है। उसका कबीला अब लड़ने को तैयार नहीं था। उसकी दुनिया सच में बिखर चुकी थी।
फिर उसने क्या किया?
वो वहां से चला गया, हताश, टूटा हुआ। बाद में जब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और उसके आदमी उसे ढूंढते हुए पहुंचे तो वो एक पेड़ से लटका हुआ मिला।
उसने आत्महत्या कर ली?
हाँ, ओकोनको ने आत्महत्या कर ली थी।
ये तो बहुत दुखद अंत है। और इग्बो समाज में आत्महत्या को कैसा माना जाता था?
बहुत बुरा, एक घोर पाप। ऐसा करने वाला अपनी जमीन के लिए भी अपवित्र हो जाता था। उसे कबीले के लोग छूते भी नहीं थे। तो आत्महत्या करके ओकोनको न सिर्फ उस नई दुनिया से कटा, बल्कि अपनी पुरानी दुनिया अपनी जड़ों से भी कट गया, पूरी तरह अकेला।
और उसका दोस्त ओबियरिका?
वो वहीं था। हाँ, ओबियरिका वहीं था, दुख और गुस्से से भरा हुआ। जब कमिश्नर ने पूछा कि लाश को क्यों नहीं उतार रहे, तो ओबियरिका ने कड़वाहट से कहा, ये अब हमारे रिवाज के खिलाफ है, इसे कोई इग्बो नहीं छू सकता।
और कमिश्नर का क्या रवैया था?
यहीं पर कहानी का वो हिस्सा आता है जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करता है। कमिश्नर ओकोनको की इस पूरी कहानी को देखकर सोचता है कि ये उसकी किताब के लिए एक अच्छा किस्सा बनेगा।
किताब? कौन सी किताब?
वो एक किताब लिख रहा था जिसका नाम सोच रहा था, द पैसिफिकेशन ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर नाइजर, मतलब निचली नाइजर की आदिम जनजातियों का शांति स्थापन।
शांति स्थापन और ओकोनको की मौत बस एक किस्सा?
हाँ, वो सोचता है कि इस पर शायद एक पैराग्राफ लिखा जा सकता है, बस एक पैराग्राफ।
ये तो बहुत ही असंवेदनशील है। ये उस पूरी मानसिकता को दिखाता है।
बिल्कुल, कैसे एक पूरी संस्कृति का विनाश एक इंसान की त्रासदी उनके लिए बस एक रिपोर्ट का हिस्सा है। शक्ति का अहंकार जो दूसरे के दर्द को देख ही नहीं पाता।
किरदार भी जबरदस्त हैं इस उपन्यास के। ओकोनको तो है ही दुखद नायक, उसकी ताकत ही उसकी कमजोरी बन गई।
हाँ, वो कमजोरी से इतना डरता था कि प्यार, संवेदना, बदलाव, इन सबको समझ ही नहीं पाया। हर चीज उसके लिए मर्दानगी का इम्तिहान था।
और जब दुनिया बदली तो वो खुद को बदल नहीं सका। उसका बेटा नुए, वो बिल्कुल अलग था।
हाँ, नुए जैसे नई पीढ़ी का प्रतीक है, संवेदनशील, सवाल करने वाला। उसे अपनी परंपरा की कुछ चीजें चुभती थीं, एके मिफुना की हत्या, वो जुड़वा बच्चे।
तो उसे ईसाई धर्म में कुछ ऐसा मिला जो उसे अपनी संस्कृति में नहीं मिल रहा था।
हाँ, शायद शांति, करुणा। उसका रास्ता भी आसान नहीं था, पिता को छोड़ना, जड़ों को छोड़ना, लेकिन उसके लिए वो एक तरह की मुक्ति थी।
और ओबियरिका?
हाँ, ओकोनको का दोस्त।
ओबियरिका जैसे कहानी की अंतरात्मा है। वो समझदार है, परंपरा का सम्मान करता है, पर सवाल भी उठाता है। वो ओकोनको की जिद को भी देखता है और बदलाव की जरूरत को भी।
वो अंत तक दोस्त रहता है, पर कुछ कर नहीं पाता।
हाँ, वो असहाय होकर सब देखता है।
उसका दुख, उसका गुस्सा कमिश्नर के सामने वो पाठक को महसूस होता है।
अगर हम मुख्य विषयों की बात करें तो सबसे पहले तो वही आता है, संस्कृतियों का टकराव।
हाँ, और अचेबे ये नहीं दिखाते कि एक संस्कृति अच्छी थी और दूसरी बुरी। वो दिखाते हैं कि कैसे अज्ञानता, संवाद की कमी और ताकत के नशे ने इस टकराव को विनाशकारी बना दिया।
और इसी से जुड़ा है परंपरा बनाम परिवर्तन। ओकोनकवो परंपरा से चिपका रहा और टूट गया। नुओये ने बदलाव को अपनाया
और ओबियरी का बीच में खड़ा देखता रहा।
पुरुषत्व का सवाल भी उठाया अचेबे ने। ओकोनकवो की मर्दानगी की परिभाषा कितनी संकरी और हिंसक है।
हाँ, भावनाओं की कोई जगह नहीं, डर की कोई जगह नहीं, आक्रामकता ही सब कुछ। इसी वजह से वो इकेमेफुना के साथ वो करता है जो करता है।
भाग्य और कर्म का भी जिक्र है, वो ची वाली बात।
हाँ, एक बो मानते थे कि हर किसी का अपना ची यानी भाग्य या आत्मा होती है, लेकिन कर्म भी जरूरी थे। ओकोनकवो का गिरना सिर्फ भाग्य नहीं था, उसके अपने फैसले, उसकी अपनी जिद भी जिम्मेदार थी।
और लिखने का अंदाज, अचेबे की भाषा, वो अंग्रेजी में लिख रहे हैं पर लगता है जैसे वो इग्बो भाषा की आत्मा को उसमें डाल रहे हैं।
बिल्कुल, वो लय, वो मुहावरे, वो कहावतें, जैसे वो कहते हैं, कहावतें वो ताड़ का तेल हैं जिससे शब्द खाए जाते हैं।
क्या बात है, ये कहावतें सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये उस संस्कृति की सोच को दिखाती हैं।
हाँ, कितना गहरा ज्ञान था उस समाज में।
प्रतीक भी बहुत हैं, यम कंद।
हाँ, मर्दानगी, हैसियत, फिर वो टिड्डियों का दल जो पहले अच्छा लगता है फिर सब खत्म कर देता है।
उपनिवेशवाद का प्रतीक
और आग, ओकोनकवो का स्वभाव तीव्र पर विनाशकारी।
कुछ लाइनें तो ऐसी हैं जो सीधे चुभती हैं, जैसे ओबियरी का कहता है, श्वेत व्यक्ति बहुत चालाक है, वो चुपचाप धर्म के साथ आया, हम हंसे, अब उसने हमारे भाइयों को जीत लिया है, हमारा कबीला अब एक नहीं रहा, उसने उन चीजों पर छुरी चला दी है जिन्होंने हमें बांध रखा था और हम बिखर गए।
ओह, छुरी चला दी, ये सीधे उपन्यास के दिल पर चोट करती है।
कैसे अंदरूनी बिखराव का फायदा उठाया गया।
एक और जगह लोग कहते हैं, हम कैसे लड़ें जब हमारे अपने भाई हमारे खिलाफ हो गए।
ये उस बेबसी को दिखाता है, जब अपने ही साथ ना हो तो लड़ना कितना मुश्किल है।
इस उपन्यास को पढ़कर एक भारीपन महसूस होता है, दुख होता है, एक पूरी दुनिया को अपनी आंखों के सामने बिखरते हुए देखने जैसा।
हाँ, और मेरे ख्याल से इसकी सबसे बड़ी बेन यही है कि इसने उपनिवेशवाद का मानवीय चेहरा दिखाया, या कहें कि अमानवीय चेहरा। इसने बताया कि ये सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं था, ये संस्कृतियों का, लोगों की आत्मा का हनन था।
इसने अफ्रीका की एक जटिल जीती जागती तस्वीर दुनिया के सामने रखी, उस आवाज को मंच दिया जिसे दबा दिया गया था।
और ये याद दिलाया कि अपनी कहानी खुद कहना कितना जरूरी है।
बिल्कुल, इतिहास सिर्फ विजेताओं का नहीं होता।
और वो कमिश्नर वाला अंत, वो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे ताकतवर लोग बड़ी बड़ी त्रासदियों को भी छोटा बना देते हैं, अनदेखा कर देते हैं।
शायद यही सबक है कि जब संस्कृतियां बिना समझ और सम्मान के टकराती हैं तो नतीजा कितना भयानक होता है।
ये आज भी उतना ही सच है ना? चाहे वो दो देशों के बीच हो या एक ही समाज के अंदर, समझ की कमी आज भी बहुत नुकसान करती है।
बिल्कुल,
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।